ये आकाशवाणी है। अब आप फरहतनाज से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नक्सलियों के विरुद्ध सुरक्षा बलों की सफलता दर्शाती है कि नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने का अभियान सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की सोशल मीडिया पोस्ट को साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति स्थापित करने और वहां के लोगों को विकास की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान में 16 महिलाओं सहित 31 माओवादी मारे गए हैं। बीजापुर में संयुक्त पत्रकार वार्ता में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम और बीजापुर के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार यादव ने ये जानकारी दी। ये अभियान करीब 21 दिन तक तेलंगाना सीमा पर बीजापुर जिले की कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर चलाया गया। श्री ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार की योजनाओं के कारण समर्पण करने वालों की संख्या बढ़ी है।
सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों एवं बलों की कार्यवाही से सरेंडर्स की संख्या में भी बहुत बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2024 में 928 एवं 2025 के पहले चार महीनों में अब तक 718 सरेंडर्स हो चुके हैं। सरकार ने माओवादियों को समाज की मुख्यधारा में शामिल होने हेतु आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति बनाई है, जो बहुत ही कारगर साबित हो रही है।
सरकार ने उत्तर प्रदेश में जेवर हवाई अड्डे के पास सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने की स्वीकृति दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस इकाई को प्रतिमाह 20,000 वेफर्स के लिए डिजाइन किया गया है। श्री वैष्णव ने कहा कि 37 अरब रूपये के निवेश वाली इस इकाई की डिजाइन आउटपुट क्षमता 3,60,00,000 यूनिट प्रतिमाह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने के मंत्रिमंडल के निर्णय से विकास और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि इससे युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध होंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सेमीकंडक्टर इकाई की स्वीकृति देश को प्रौद्योगिकी का शक्ति भंडार बनाने की दिशा में एक और कदम है। भारत की तकनीकी टीम न्यूयॉर्क में है और संयुक्त राष्ट्र में आज संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव 1267 के अनुपालन के लिए सुरक्षा परिषद की समिति की निगरानी टीम और अन्य भागीदार देशों के साथ बातचीत कर रही है। भारत 1267 प्रस्ताव के तहत समिति में अपना मामला पेश करने की तैयारी कर रहा है। इसका उद्देश्य आधिकारिक तौर पर द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF को आतंकी गुट के रूप में सूचीबद्ध कराना और इस गुट को पाकिस्तान से मिल रहे समर्थन को दर्शाना है। ये कदम 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर उठाया गया है, जिसमें 26 भारतीय नागरिकों की हत्या की गई थी। उत्तरी और दक्षिणी गाजा में इजरायली हवाई हमलों में करीब 70 लोग मारे गए हैं। इससे एक दिन पहले इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा था कि सशस्त्र समूह हमास के पराजित होने तक वे फलस्तीनी क्षेत्र में हमले नहीं रोकेंगे। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय और अस्पतालों के अनुसार उत्तरी गाजा में जवालिया के आसपास हमलों में ही 50 लोग मारे गए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के साथ सीधी शांति वार्ता में शामिल नहीं होंगे। ये वार्ता आज से तुर्की के इस्तांबुल में शुरू होनी है। रूस ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति पुतिन के सहयोगी व्लादिमीर मेदेंस्की रूसी शिष्टमंडल का नेतृत्व करेंगे। शिष्टमंडल में रूस के उप विदेश मंत्री मिखाइल गैलुजिन, जनरल स्टाफ डायरेक्टर इगोर कोस्तियोकोव और उपरक्षा मंत्री अलेक्जेंडर फोमिन शामिल हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल राजधानी दोहा में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ बातचीत की। राष्ट्रपति ट्रंप पश्चिम एशिया के 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में सऊदी अरब की यात्रा के बाद कल दोहा पहुंचे। 20 वर्षों से अधिक समय में किसी अमरीकी राष्ट्रपति की कतर की ये पहली यात्रा है। श्री ट्रंप आज कतर से संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। भारतीय खिलाड़ी आज बैंकॉक में थाईलैंड बैडमिंटन ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में खेलेंगे। पुरुष सिंगल्स में थारून मन्नेपल्ली का सामना डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसेन से होगा। महिला सिंगल्स में भारत की शीर्ष खिलाड़ी मालविका बंसोड का सामना थाईलैंड की रत्चानुक इंटानोन से होगा। भारत की उन्नति हुडा का सामना थाईलैंड की पोनपावी चोचुवोंग से और आकर्षि कश्यप का थाईलैंड की सोपनिटा कटेथोंग से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।